व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यताम् अद्भुतरूप उद्वहाम् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातु निजवृत्तभासितां व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यताम् अद्भुतरूप उद्वहाम् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्
रुके 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 महाराज पढ़ लें दीजिए। माता जी सत्यम सच करने के लिए, विधातुम सिद्ध करने के लिए,
निज भृत्त भाषितम, अपने दास के ही शब्दों को व्याप्तिम उपस्थित च तथा भूतेषु जीवों तथा तत्वों के मध्य अखिलेषु समस्त च तथा आत्मनः अपना अदृश्यतः दिखाई पड़ा अति अत्यंत अद्भुत अद्भुत रूपम रूप उद्वहन धारण करके स्तंभे स्तंभ में सभायाम सभा के भीतर न नहीं मृगम पशु न न तो मानुषम मनुष्य। अनुवाद तात्पर्य भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय। अपने दास प्रहलाद के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य हैं, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित हैं, यहां तक कि सभा भवन के स्तंभ के भीतर भी हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना अद्भुत पूर्व अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा कहां तुम्हारा भगवान है, क्या वह इस खम्भे में उपस्थित है, तो प्रहलाद महाराज ने निर्भय होकर उत्तर दिया हां मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं। अतएव हिरण्यकश्यपु को यह विश्वास दिलाने के लिए कि प्रहलाद महाराज का कथन अकाट्य रूप से सत्य था, भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए। वे आधा सिंह तथा आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, जिससे हिरण्यकश्यपु यह नहीं जान पाया कि यह विराट दैत्य दैव सिंह है या मनुष्य। प्रहलाद के कथन की पुष्टि करके भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कौन्तेय प्रतियानहि नमे भक्त्या प्रणश्यति। यद्यपि प्रहलाद का असुर पिता उन्हें मार डालने की बार बार धमकियां दे चुका था, किंतु प्रहलाद को विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। खंभे से प्रकट होकर भगवान ने मानो यह कहते हुए अपने भक्त को प्रोत्साहित किया हो, मत चिंतित हो, मैं यहां उपस्थित हूं। नृसिंह देव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के वचनों को भी रख दिया कि हिरण्यकश्यपु का वध न तो किसी पशु के द्वारा होगा न मनुष्य द्वारा। भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए जो न तो पूरी तरह मनुष्य का न सिंह कहा जा सकता था। सामने आ जाओ। ओम अज्ञान अतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे तो आज भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव तिथि है। नरसिंह देव का भक्तों के जीवन में बहुत ही मायना है। भक्त लोग भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं वे भक्तों के भक्ति का रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान आते हैं भक्तों का रक्षा करने के लिए। भक्तों का रक्षा किससे करनी है, रक्षा का मतलब क्या है, यह समझना चाहिए। भक्ति में विभिन्न वस्तुएं हैं जो बाधक बनती है। ये माया संसार है और यहां पर बाधाओं की कमी नहीं है। पदम पदम जत विपदम न तेषां, ये सब जो बाधाएं हैं ठीक है, लेकिन ये बाधाएं उतनी प्रभावशाली नहीं है जो बाधाएं अंदर से उत्पन्न होती है। बाहर के बाधाओं को हम सह सकते हैं, बाहर के बाधाओं को कोई रक्षा कर सकता है हमारा, लेकिन जो आंतरिक बाधाएं हैं जो अंदर से उत्पन्न होती है, जो इंद्रियों से प्रदत्त है, उनसे रक्षा करना। तो भगवान नरसिंह देव सब प्रकार से हमारा रक्षा करें, हमारी गुरु भक्ति, वैष्णव भक्ति, गुरु भक्ति, गौरांग भक्ति और राधा रास बिहारी का भक्ति का वे रक्षा करें। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका लक्ष्य है गुरु गौरांग राधा कृष्ण को प्रसन्न करना। गुरु श्रील प्रभुपाद जी कैसे प्रसन्न होंगे? भक्त कोई भी सेवा करता है, भगवान से संबंधित सेवा है, तो गुरु प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना इस्कान के भक्तों के जीवन का लक्ष्य है। प्रभुपाद जी सभी सेवाओं को सम्मान दिए, लेकिन प्रसन्न करने के लिए एक स्पेशल सेवा दिए। जानते हो क्या है सिन्हा जी? वेरी गुड। सो हाउ मेनी बुक्स टुडे? प्रभुपाद सेड इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रभुपाद जी के प्रसन्नता के लिए सेवा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी स्थान का भक्त है उन्हें बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगना चाहिए। आज भगवान नरसिंह देव से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, तो भगवान नरसिंह देव हमारा रक्षा कीजिए कि मैं श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों का वितरण कर सकूं। कल ही हम लोगों की मीटिंग हुई थी और मीटिंग में मंथन हो रहा था पुस्तक वितरण के संबंध में। शाम को सेमिनार भी हुआ था बुक डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में। तो जुहू मंदिर के सब पदाधिकारी लोग, सब भक्त लोग संकल्प लिए हैं, संकल्पबद्ध हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पुस्तक वितरण करेंगे और इसमें सब लोगों का सहयोग चाहिए, सब लोगों का सहयोग, सब लोगों का सहयोग चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, फुल टाइम डिवोटी हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, सब लोग सहयोग करें। अब हम नरसिंह भगवान से आज स्पेशल प्रार्थना करेंगे। कल हम भीमा प्रभु से स्पेशल रिक्वेस्ट किए हैं, आज नरसिंह चतुर्थी के अवसर पर विशेष रिक्वेस्ट करते हैं। डीबीटी से कि वो लोग थोड़ा डिस्काउंट दे दें किताब पर ताकि ज्यादा वितरण हो सके, मार्कअप थोड़ा कम कर दें तो हम ज्यादा वितरण कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग करेंगे। तो हम लोगों को भगवान नरसिंहदेव से आज प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु गौरांग राधा कृष्ण के प्रसन्नता के लिए हमें आशीर्वाद दें, हम लोगों के भक्ति का रक्षा करें, जिसे ज्यादा से ज्यादा पुस्तक हम लोग वितरण कर सकें। नरसिंह भगवान की जय। तो भागवत महापुराण में 10 विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है। 12 स्कंद हैं, जिसमें प्रथम 2 स्कंद है, प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद वो वक्ता और श्रोता के गुणों का वर्णन किया गया है, और दूसरा स्कंद है वह भगवत प्राप्ति के लिए जो मार्ग है उसका वर्णन किया गया है, धर्म सेतु का वर्णन किया गया है। उसके बाद तीसरे स्कंद से प्रारंभ होता है, अत्र सर्ग विसर्ग च स्थानम पोषण ऊतय मनमंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। इस प्रकार से 10 विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है। ये जो 7वां स्कंद है यह उन 10 में से चौथा जो विषय वस्तु है जिसे पोषण कहा जाता है। पोषण का मतलब होता है, नहीं सॉरी, 6ठे स्कंद को पोषण कहा गया, अत्र सर्ग विसर्ग स्थान पोषण। हाँ, और ये 5वां है, सॉरी, और यह जो स्कंद है इसे उति कहा गया है। 6ठे स्कंद में पोषण का वर्णन किया गया है। पोषण का मतलब होता है पुष्टि, पुष्टि मतलब अनुग्रह। तो भगवान के अनुग्रह की कथा कही गई है 6ठे स्कंद में। भगवान के अनुग्रह के पश्चात, भगवान अनुग्रह किए हैं। अनुग्रह का मतलब होता है सब लोगों का भरण पोषण। भगवान हम लोगों के भरण पोषण के लिए सब वस्तुओं का व्यवस्था किए हैं, ऑक्सीजन जो जरूरी है, खाने पीने के लिए जल भोजन इत्यादि, साथ साथ भगवान सुंदर शरीर दिए हैं। ये सब भगवान का अनुग्रह है। यदि इस अनुग्रह का हम सदुपयोग करें, किसके लिए? विषय वासना को नष्ट करने के लिए। जब विषय वासना नष्ट की कर सकते हैं भगवान के अनुग्रह से, जो भी भगवान व्यवस्था किए हैं, इस व्यवस्था के पीछे एक ही बात है, उसका सदुपयोग हमें करना चाहिए। यदि उसका सदुपयोग किया जाए तो वह अनुग्रह जो है वह पुष्ट होता है। यानी भगवत भक्ति में अपने समय को लगाए, भगवान के स्मरण में तन्मय हो जाए, तब जीव पुष्ट हो जाता है। कृष्ण सभी जीवों पर अनुग्रह करते हैं, किंतु उस अनुग्रह का सदुपयोग दुख के कारण है कि जीव जानता नहीं है उसका सदुपयोग कैसे किया जाए। साधु संघ ये भगवान का अनुग्रह है, ये साधु संघ जो है भगवान का अनुग्रह है, लेकिन इसका सदुपयोग करना हम नहीं जानते हैं। ये मंदिर ये भगवान का अनुग्रह है। आश्रम कृष्ण प्रसाद जो कुछ भी प्राप्त हुआ है यह भगवान का अनुग्रह किया जाता, भगवान का अनुग्रह है। यदि इस अनुग्रह का सदुपयोग करेंगे, जीव यदि इसका सदुपयोग करेगा तो इसका परिणाम क्या होगा कि जीव पुष्ट होगा, उसकी भक्ति पुष्ट होगी। यदि इस अनुग्रह का दुरुपयोग किया गया तो वह जीव दुष्ट होगा। अनुग्रह का सदुपयोग करने से पुष्ट होगा और दुरुपयोग करने से दुष्ट होगा। अब डिपेंड हमारे ऊपर है कि हम क्या करना चाहते हैं। इस अनुग्रह का हम पुष्टि करना चाहते हैं, हम पुष्ट होना चाहते हैं भक्ति में, कि इसका दुरुपयोग करके दुष्ट होना चाहते हैं। जय श्री श्री राधा बिहारी की जय, कौर निताई की जय, सीताराम चौहान की जय। उसी प्रसंग में वासना का बात आता है। प्रारंभ होता है पुष्टि से, पोषण से, अनुग्रह से। ये जो सातवां स्कंध है, इस सातवें स्कंध में 15 अध्याय हैं और यह एक ऐसा स्कंध है जिस स्कंध में शुरू से अंत तक प्रहलाद महाराज ही हीरो हैं। बिलियन हिरण्यकश्यपु हैं, लेकिन मिस्टर हिरण्यकश्यपु, प्रभुपाद कहते हैं मिस्टर हिरण्यकश्यपु, लेकिन प्रहलाद महाराज हीरो हैं। ये जो 15 अध्याय हैं, इसका समरी मैं बताऊंगा, लेकिन हम अनुग्रह का बात कर रहे थे, पोषण का बात कर रहे थे, भगवान की कृपा का बात कर रहे थे। देखिए, प्रहलाद महाराज पर भी कृपा है और हिरण्यकश्यपु पर भी कृपा है। हिरण्यकश्यपु ने भगवान के कृपा को, भगवान के अनुग्रह का दुरुपयोग किया तो क्या बना? दुष्ट बना। और प्रहलाद जी उसका सदुपयोग किए, अतः वे पुष्ट बने। दुष्ट मतलब दैत्य और पुष्ट मतलब देवता। प्रहलाद जी देवता बन गए, देवतुल्य हो गए, और हिरण्यकश्यपु क्या बन गया? दैत्य बन गया, असुर बन गया। तो यह जो स्कंध है, यह वासना का स्कंध है। उतय उतय कर्म वासना, उतय कर्म वासना, उती का मतलब होता है कर्म करने की वासना, कर्म करने की इच्छा। तीन प्रकार की वासना होती है, असदवासना, सदवासना और मिश्र वासना। इन तीनों वासनाओं का वर्णन इस सातवें स्कंध में किया गया है। सातवां स्कंध प्रारंभ होता है प्रथम अध्याय में, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। जब विश्वासुर मारे गए, जो भगवत गति को प्राप्त किए, तो बड़ा परीक्षित महाराज का आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इंद्र का रक्षा करने के लिए वृत्रासुर का वध किए, जो पूर्णतया भक्त है। ऐसा कैसे हो सकता है जब सब प्राणी ईश्वर के ही अंश हैं, तो फिर विषम भाव के। यहीं से ये अध्याय प्रारंभ होता है। सम प्रिय सुहृद ब्रह्मण भूतानाम भगवान स्वयं इंद्रार्थे कथम दैत्यम दैत्यान अविध विषमो यथा। इंद्र के लिए वे वृत्रासुर का वध भगवान क्यों किए? वे तो सभी प्राणियों के प्रति सम हैं, सबके प्रति सुहृद हैं, तो भगवान ने ये विषमता क्यों? चूहा और बिल्ली दोनों भगवान के अंश हैं। तो ऐसा क्यों देखा जाता है कि बिल्ली चूहे को मारने दौड़ती है? ये विषमता क्यों? दोनों जो भगवान के अंश हैं तो विषमता क्यों? तो परीक्षित महाराज की बात को समझा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। पहले तो उनके प्रश्नों का बड़ा गुणानुवाद किए कि बहुत सुंदर आपने ये प्रश्न किया। देखिए, प्रहलाद महाराज का चरित्र सुनने से भक्ति की वृद्धि होती है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, साधुम पृष्ठम महाराजम हरि चरित अद्भुतम। भगवान के अद्भुत चरित्र के विषय में आपने प्रश्न किया है। यद भागवतम महात्मा, जिसमें भगवान और भगवान के भक्त का गुणानुवाद किया गया है, इस प्रकार का गुणानुवाद सुनने से भगवत भक्ति वर्धनम, भगवत भक्ति की वृद्धि होती है। भगवत भक्ति की और उनके प्रश्न का ही गुणानुवाद कई एक श्लोकों में वे किए हैं। गीयते परम पुण्य ऋषि भी नारदादि भी। अरे, भगवान और भगवान के भक्तों का गुणानुवाद बड़े प्रेम से बड़े बड़े ऋषि लोग गुणानुवाद करते रहते हैं। नारद, सनकादि आदि सब लोग, नत्वा कृष्णाय मुनये कथय से हरे कथा। अब वे कृष्ण द्वैपायन व्यास देव को प्रणाम करके अब ये कथा प्रारंभ कर रहे हैं। तो मुख्य करके दो बात बताई गई है यहां पर। सुखदेव गोस्वामी कहे हैं कि देखो, भगवान का भाव में समानता है लेकिन व्यवहार अलग अलग। इसका परिचय हम लोगों को है। अपने परिवार में देखिए, विभिन्न प्रकार के लोग हैं। श्रीराज जी, आपके परिवार में कौन कौन है? वाइफ है, शादी किए हो? ऐसे ब्रह्मचारी हो? एनीवे, चलो, बाल बच्चे? अब देखो, इनके पास तीन पीढ़ी है। पिताजी हैं एक पीढ़ी, एक इनकी पत्नी दूसरा, और इनके बच्चे। इनकी भावना सब में है। पिता के प्रति भी भावना का मतलब प्रेम, भावना सब में है। पिता में प्रेम है, पत्नी में प्रेम है और बच्चों में प्रेम है ना? लेकिन तीनों में व्यवहार अलग अलग होगा। प्रेम है सबसे, तो उसी प्रकार से भगवान प्रेम सबसे करते हैं लेकिन व्यवहार में अलग दिखाई पड़ता है। अब जो नहीं जानता है वही कहता है विभिन्न प्रकार का बात, लेकिन जो जानता है वो जानता है किससे कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो भगवान जानते हैं कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रथम अध्याय जो है, इसमें सुखदेव गोस्वामी एक उपाख्यान के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसा परिचित तुम प्रश्न किए हो, ठीक ऐसा ही प्रश्न तुम्हारे दादा भी किए थे, तो तुम्हारे परंपरा से आ रहे, कोई बात नहीं है। तुमको आश्चर्य हुआ कि दादाजी ऐसा कैसे प्रश्न कर दिए? तो उन्होंने कहा, एक समय का बात था, जब वे राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो उस समय एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम था शिशुपाल। वे भगवान कृष्ण के मौसेरे क्या बुआ के लड़के थे और तुम्हारे दादा के मौसी के लड़का थे, मौसेरे भाई थे। अब राज्यसभा में वे विभिन्न प्रकार से कृष्ण का उपहास करने लगे, विभिन्न प्रकार से कृष्ण का को गाली गलौज करने लगे। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि अंत में वह जब भगवान उसका वध किए तो भगवान विष्णु स्वरूप को प्राप्त किया, भगवान में विलीन हो गया। तब उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्होंने नारद जी से ये प्रश्न किया कि ये कैसे हो सकता है कि यह दमघोष का बेटा, हम समझ जी ऋषि कितने गुस्सा में हैं, बाप का नाम लेकर कह रहे, शिशुपाल नहीं कह रहे हैं, कहते हैं दमघोष का यह जो बेटा है, दमघोष सुत पाप, ये साक्षात पाप है दमघोष का बेटा। आरभ्य कलभाषणात्, जब से जन्म लिया और तुतली बोली में बोलने लगा, कभी धर्म का बात नहीं कहा। ये पानी पी पी करके यह और दंतवक्र दोनों कृष्ण को गाली दिए हैं, भर पेट गाली दिए हैं। और ऐसे दुष्ट को भगवान ने यह गति दे दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, ये हमारे समझ से परे है। ऐसे कैसे, इसको तो नरक में जाना चाहिए था। तब वहीं से प्रारंभ करते हैं और नारद जी प्रथम अध्याय में बतलाते हैं हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष के पूर्व कथा की बात। तो यह हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष कोई सामान्य नहीं है। ये हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष पूर्व जन्म में भगवान के पार्षद रहे, भगवान के कई एक पार्षद हैं, उनमें से अंतिम दो द्वार है वैकुंठ का, जहां भगवान लक्ष्मी जी के साथ में निवास करते हैं, वहां पर इन लोगों का पहरा था और इनका नाम था जय और विजय। एक दिन ब्रह्मा जी के सुपुत्र, चार पुत्र, क्या नाम है, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये बड़े अनोखे ब्रह्मचारी लोग हैं, वो कहीं कभी तपा पड़ते हैं। ये छोटे बच्चे होते हैं, नंग धड़ंग कहीं घूम जाते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है कि प्राइवेट रूम है कि पब्लिक रूम है, पति पत्नी घर में अंदर बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। संडे का दिन था, भगवान लक्ष्मी नारायण आराम कर रहे थे, ये लोग टपक पड़े वहीं पर, पहुंच गए वहीं पर। पहले के द्वारपाल लोग तो रोके नहीं, अब जय विजय अंतिम द्वारपाल थे, उनका कड़ा पहरा था, भगवान प्राइवेट में है, अभी लक्ष्मी जी के साथ में फुर्सत मिला हुआ है। ये जय विजय पहुंच गए वहां पर, नंग धड़ंग पहुंच गए वहां पर, द्वारपाल रोक दिए। देखो बच्चे कुछ करना चाहते हैं और आप रोक दो तब तो हल्का मच जाएगा। बड़े लोग समझ सकते हैं, उनको समझा दिया जा सकता है, लेकिन बच्चों को समझाना, इसे कहा जाता है बालहठ, जानते हो ना जी। ये बालहठ और स्त्री हठ एक ऐसा हठ है, सबको नतमस्तक होना पड़ता है, सबको इसका अनुभव होगा, ये दो हठ बड़ा। तो बेचारे जय विजय समझाने का प्रयास किए थे कि देखिए आज संडे का दिन है, आज भगवान छुट्टी पर हैं, आप लोग नहीं मिल सकते हो, लेकिन इन लोगों क्या संडे मंडे से क्या पता है, इन लोगों को तो भगवान से मिलना है। अब जय विजय मना कर रहे हैं, पहले खूब समझाए, नहीं समझे मना कर रहे हैं। तो भले वे छोटे बालक के समान थे, जय विजय नहीं समझ पाए उनके अस्तित्व को, उनके स्वरूप को, कि वो लोग छोटे नहीं हैं, उनके भी वे बाप हैं, प्रथम सृष्टि के जीव है ना जय विजय, सबसे बड़े हैं वे लोग, लेकिन उन्हें जानकर अपने को छोटे रखे, क्योंकि ब्रह्मचारी रहना था, ब्रह्मचारी रहना छोटा रहो, बड़ा बना तो गया काम से, ब्रह्मचारी रहना तो छोटा, इसका मतलब नंग धड़ंग मत घूमो। वो तो छोटे हो गए थे 5 साल के, तो 5 साल का बच्चा नंग धड़ंग घूमा कोई बात नहीं। तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये भगवान का धाम है, यहाँ लक्ष्मी नारायण का स्थान है और यहाँ ही लोग रुक रहे हैं, ये तो असुर काम करता है। भगवान का भजन करने में, भगवान के धाम जाने में, भगवान के पास जाने में जो रोकता है वह असुर होता है। इसीलिए कोई मंदिर आ रहा हो, बेटा मंदिर आ रहा हो, पत्नी मंदिर आ रही हो, पति मंदिर आ रहा हो, तो यहां पर जितने पति पत्नी बेटे बाप हैं सब याद रखो, रोकना मत, बल्कि 100-10 रुपया दे दो, भाड़ा ले लो, जाओ मंदिर जाओ, जल्दी जाओ, रोकना मत। रोकना मतलब असुर का काम। तो जय विजय से वहां पर थोड़ा गर्मा गर्मी हो गया, छोटे बच्चे थे ही, चिल्लाने उलाने लगे वहां पर, अब बड़ा कोलाहल हो गया, कमोशन हो गया। तो भगवान बोले, लक्ष्मी जी से कुछ गड़बड़ चल रहा है उधर, देखते हैं क्या हो गया। तब तक से बच्चे लोग गुस्सा में से श्राप दे दिए कि तुम लोग असुर के समान काम कर रहे हो, और भगवान लक्ष्मी नारायण वहां पर आ रहे हैं, अब श्राप हो गया कि जाओ तुम लोग असुर बन जाओ, असुर बन जाओ, क्योंकि आश्रित प्रवृत्ति के तुम लोग हो, तुम लोग यहां रहने के योग्य नहीं हो, जाओ असुर बन जाओ। अब तब तक से भगवान आए लक्ष्मी नारायण वहां पर, बड़ा गड़बड़ हो गया। अब श्राप को काटने का एक ही तरीका था, श्राप देना। लेकिन जय और विजय जब रोके थे उन लोगों को, उस समय भगवान की कुछ इच्छा थी, भगवान चाहता था कुश्ती करने के लिए, रौद्र अपना वीर भाव का आस्वादन करना चाहते थे। तो कराए कौन, भक्त ही होना चाहिए। तो जय विजय की बड़ी इच्छा हो गई और सनत कुमार लोग भी आ गए, नहीं तो बैकुंठ धाम में श्राप देने जैसा बात कैसे हो सकता है, बैकुंठ धाम में गुस्सा कैसे हो सकता है, वहां तो समता का भाव है, वो बैकुंठ है, यहां पर कोई कुंठा है ही नहीं। तो ये किस प्रकार से हो सकता है कि सनत कुमारों को गुस्सा आ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है जय विजय रोक दे सनत कुमारों को, क्योंकि भगवान की इच्छा थी और भगवान चाहते थे लड़ाई करना, और भक्त लोग भगवान का इच्छा पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। अब आ गए भगवान, देखे तो बड़ा गर्मा गर्मी हो रहा था, बात हुआ क्या हुआ क्या हुआ सब वापस पर चला, और भगवान को क्षमा मांगना पड़ा। भगवान ने कहा क्षमा करना, आप लोग क्या करें, एम्बुर्ख हमारे वॉचमैन लोग ये समझ नहीं पाए, ये गलती कर दिए, वास्तव में गलती इनका नहीं है, गलती हमारा है, हमने ट्रेनिंग नहीं लिया है। शास्त्र में कहा जाता है बेटा गलती करता है तो बेटा गलती नहीं होता, लोग कहते हैं किसका बेटा है, पूछते ना किसका बेटा है, वो बाप को लोग पूछते हैं, बाप ने कुछ सिखाया नहीं किया, कहते आजकल नहीं कह सकते हैं क्योंकि बाप का बच्चे पर अधिकार है नहीं आजकल, पहले कहते थे तेरा बाप मत कुछ सिखाया नहीं क्या, आजकल कहेंगे कोई कोई कहता है आजकल, सुनते हो ऐसा, आजकल बच्चे कोई नहीं कर सकता है, और कहने जाओ तो बच्चे कहेंगे बाप मैं क्या जानता, उनसे ज्यादा मैं जानता हूं, आजकल ही है ना, जमाना बदल गया है। यदि नौकर कुछ गलती करता है कैसा है, वृत्ति अपराध है, वो वृत्त कोई गलती करता है तो अपराध उसका नहीं बल्कि वो जो मालिक है उसको, तो भगवान को क्षमा मांगना पड़ा। अब तो जय अबे चतुष कुमार भगवान का दर्शन किए, शशांक प्रणाम प्रणाम किए, अब तो बड़े खुश हो गए, भगवान दर्शन हो गया, चलो इसी बहाने भगवान तो बाहर आ गए, हमको अंदर जाना पड़ा। अब बेचारे जय विजय अब इन लोगों का यही प्रणाम कर रहे भगवान सामने, भगवान ने कहा मैं हेल्प नहीं कर सकता हूं, मैं भी हेल्पलेस हूं, अब तो श्राप हो गया है, एक ऑप्शन मैं दे सकता हूं, और ऑप्शन यह है यदि आप लोग नहीं, वो लोग हाँ जोड़कर मांग ले भगवान, प्रार्थना करें भगवान अब हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं, हम क्या करेंगे कैसे, तो भगवान कहते हैं तुम लोगों का हमारा स्मरण बना रहेगा, लेकिन श्राप तो है, तुम लोगों को जाना पड़ेगा। हमारा स्मरण बना रहेगा, लेकिन 7 जन्म तक तुम लोगों को मुझसे अलग रहना पड़ेगा। 7 जन्म के बाद तुम लोग मुझे प्राप्त कर सकते हो। 7 जन्म तो बहुत दिन हो जाएगा, हम उतना बिरह व्यथा नहीं सह सकते हैं। देखिए वैष्णव लोग कैसे हैं, जय विजय। सेवा के बिना भक्त लोग एक क्षण नहीं बिताना चाहते हैं। बिना सेवा का जो समय बीत रहा है बेड के ऊपर, वह अच्छा समय नहीं है। भगवान के सेवा में ही समय बीतना चाहिए, यही अच्छा समय है। एक क्षण भी ऐसा न जाए कि भगवान का चिंतन न हो, भगवान का सेवा न हो। हमें जो भक्त लोग होते हैं, भगवान की सेवा के लिए इतने ललायित रहते हैं, 7 जन्म बहुत ज्यादा हो गया। कहे प्रभु ऐसा नहीं हो पाएगा, हम आपके विरह में नहीं रह सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तब 3 जन्म तक तुम लोगों को मुझसे अलग रहना पड़ेगा। लेकिन पहले वाले में था भगवान का स्मरण करते हुए, और दूसरे कंडीशन में भगवान का विस्मरण होकर के। भगवान के विस्मरण में 3 जन्म और भगवान के स्मरण के साथ में 7 जन्म। अब भगवान ने भी ऑप्शन दिया, भगवान ऑप्शन दिया, भाई तुम डिसाइड करो क्या करना है। तो उन लोगों ने चुना, क्या चुना? 3 जन्म। तो नाराज जी कहते हैं वही 3 जन्म हुआ, और प्रथम जन्म जो है हुआ है हिरण्यकश्यपु, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु का। दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण का, और तीसरा जन्म जो है वह दंतवक्र और शिशुपाल का। तीनों जन्मों में, प्रथम जन्म में भगवान मारे, मुक्ति नहीं दिए, पुनः जन्म लिए वे लोग। किस रूप में जन्म लिए? रावण और कुंभकर्ण। भगवान राम आए, मारे, मुक्ति नहीं दी। फिर तीसरा जन्म हुआ, क्या हुआ? दंतवक्र और शिशुपाल। अब देखिए ये तीनों जन्मों में इन लोगों का साधु संग हुआ है। हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष का भी साधु संग हुआ है, प्रहलाद जी से साधु संग हुआ है। रावण और कुंभकर्ण का भी साधु संग हुआ है, और दंतवक्र शिशुपाल का नहीं, क्या है? भगवान के बिल्कुल। लेकिन इन लोगों ने चुना था कि भगवत आपका विस्मरण बना रहे। साधु संग हो गया तो स्मरण हो जाएगा ना, तो भगवान से इन्होंने मांगा था विस्मरण वाला, तो भगवान अपना काम पक्का किए हैं, विस्मरण बना रहा। तीसरे जन्म में जब लोग दंतवक्र और शिशुपाल बने, तब इन लोगों का मुक्ति हुआ। वहां शब्द आया मुकुंद, मुकुंद के हाथ से मारे गए थे, मुकुंद ने मारा इसलिए उनका मुक्ति हुआ। तो नारद जी ये दंतवक्र, सॉरी ये तीनों जन्मों के विषय में संक्षिप्त में प्रथम अध्याय बताए। नारद ऋषि संवाद आरंभ, जय विजयो सनकादि सापे दैत्य जन्म प्राप्ति, ये प्रथम अध्याय है। दूसरा अध्याय जो है जिसमें अब हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष पुष्ट हुए हैं, उसमें से हिरणाक्ष बड़ा प्रतापी था। जब अपने कंधे पर गदा लेकर के भ्रमण करता था, चलता था, तो पृथ्वी कांपने लगती थी, इतना प्रभावशाली था। पृथ्वी को अपने पैर तले दबा दिया था, पृथ्वी का रक्षा करने के लिए भगवान आए थे, और वे हिरण्यकश्यपु का वध किए। जब हिरण्यकश्यपु मारा गया, तदोपरांत हिरण्यकश्यपु अपने माता अदिति, हिरण्यकश्यपु की पत्नी और उनके पुत्रों को भली भांति समझाए, दो उपाख्यान दिया गया है, एक राजा का उपाख्यान और एक कबूतर और उसके परिवार का उपाख्यान। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु समझाए। अब हिरण्यकश्यपु समझा लिए तो अब वे निश्चय किए। अच्छा, हिरण्यकश्यपु गीता जो है बड़ा अच्छा है, आप लोग पढ़ लेना। हिरण्यकश्यपु गीता है सातवें स्कंद के दूसरे अध्याय, बहुत सुंदर बात हिरण्यकश्यपु बताए हैं। असुर थे लेकिन शास्त्र का अच्छा जानकारी रखते थे, जैसे आजकल के पॉलिटिशियन लोग, वो लोग अच्छा प्रवचन कर लेते हैं, शास्त्र जानते हैं। एक बार हम लोग की रथ यात्रा हो रही थी यहीं पर जेबी पीडी ग्राउंड में यहाँ पर, और कोई गवर्नर आए थे का नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या सुंदर बात चैतन्य महाप्रभु के विषय में जगन्नाथ के विषय में बताए। मैं कहा यार तो हम लोग ज्यादा जानते हैं तो जगन्नाथ के विषय में, लेकिन है पॉलिटिशियन। तो ऐसे ही असुर लोग समान नहीं थे, बहुत विद्या में बड़े निपुण थे। तो बहुत सुंदर ढंग से हिरण्यकश्यपु समझाए, लेकिन मन में बात था कि वे तपस्या कर करके और विष्णु का वध करेंगे। तो यह जो कथा है तपस्या वाली कथा, मैं इसको विष्णु पुराण से इसका वर्णन करूंगा। हिरण्यकश्यपु संकल्प लिए कि अब मैं तपस्या करने जाऊंगा। हिरण्यकश्यपु का विवाह हो चुका था। हिरण्यकश्यपु के पत्नी का नाम कहीं कहीं कल्याणी बताया गया है और कहीं कहीं कयाधु, मुस्ली कयाधु लोग जानते हैं। कहता है कि उत्तानपाद के एक पुत्री थी, उत्तानपाद की ध्रुव महाराज, उत्तानपाद की एक पत्नियां थी, उसमें से एक पत्नी की एक पुत्री थी जिसका नाम था कल्याणी या कयाधु, वह हिरण्यकश्यपु की पत्नी बनी थी। तो जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने जा रहे थे, कयाधु आई थी और उस दिन वह अपने मासिक से परे हो गई थी, कमातुर थी, और हिरण्यकश्यपु से विभिन्न प्रकार से प्रेमवत व्यवहार कर रही थी, बात कर रही थी। हिरण्यकश्यपु को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि भाई मारा गया था और उसके मन में एक ही चीज छाया हुआ था कि भाई का जो शत्रु विष्णु है उसको मुझे खत्म करना है। तो कयाधु पूछी कि आप कहां जा रहे हैं? तो हिरण्यकश्यपु कहा कि मैं तपस्या करने जा रहा हूं। कहा तपस्या किस लिए? कयाधु विष्णु भक्त थी, कयाधु भक्त थी, ऐसा होता है, कयाधु भक्त और हिरण्यकश्यपु असुर। रावण की पत्नी मंदोदरी सतियों में से एक श्रेष्ठ भक्त और रावण असुर, तो कोई बड़ा नया चीज नहीं है। तो कयाधु भक्ति पूछी कि तपस्या करने, तो कयाधु बड़ी खुश हो गई, कहे कि हमारे काम वासना से अच्छा है तपस्या करने, लेकिन तपस्या का फल क्या होगा, किस लिए तपस्या करने जा रहे हैं? तो विष्णु को मारने के लिए। तब उसे अच्छा नहीं लगा कि हाय हाय हमारे पति ऐसा कर रहे हैं। तो पूछी कि तो आप कब तक आ जाएंगे तपस्या करके? तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि पता नहीं, 10,000 साल लग सकते हैं, पता नहीं कितना लगेगा, लगेगा तो मैं आ जाऊंगा। और हिरण्यकश्यपु जब तपस्या करने का दृढ़ निश्चय कर चल दिया, अब देवताओं में खलबली मच गई कि अब तो हिरण्यकश्यपु तपस्या करने जा रहा है और तपस्या का फल क्या प्राप्त करेगा? बल प्राप्त करेगा विष्णु को मारने के लिए। और देवता लोग भागते भागते देव गुरु बृहस्पति के पास गए, गुरुदेव कुछ कीजिए, आप बताइए कुछ कीजिए। तो देव गुरु ने कहा चिंता मत करो, अब मैं देखता हूं क्या करने का। देव गुरु चले गए एक तोता बनकर के, जहां हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा था, पेड़ पर बैठ करके तोता के रूप में देवगुरु अस्पताल गए, नारायण 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 नारायण, हम बार बार नारायण नारायण, फिर हम कैसे तपस्या कर रहा है, कान में नारायण नारायण जोर से नाम आ रहा है, तपस्या भंग होता जा रहा है। बेचारा सुबह से शाम तक खूब प्रयास किया, लेकिन उसे कान में केवल नारायण 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 नाम सुनाई पड़ रहा था। कहा कि आज का दिन शुभ दिन नहीं तपस्या करने के लिए, मैं मुहूर्त ठीक नहीं निकाला, गड़बड़ मुहूर्त में आ गया, आज तपस्या नहीं करूंगा कल करूंगा, चलो चल दिया। अब यहां कश्यप आया तो कयाधु को आश्चर्य हो गया, बहुत जल्दी इनका तपस्या हो गया, आ गए। तो बेचारी पूछने वाली थी, सोचिए कि कैसे पूछूं, यदि पूछूं तो इनका तो गुस्सा नाक पर रहता है, हमको डांट, तुम्हें इससे मतलब क्या है, तपस्या मैं करूं या ना करूं तुम्हें क्या लगता है, तुम तो विष्णु का भजन करो, कुछ भी कह सकते हैं, जो हमारा शत्रु है। तो उसने उपाय सोचा, थके मंजे बेचारे थे, कयाधु ने जितने नौकर लोग थे उन लोगों से कहा कि आज तुम लोग महाराज के लिए खाना नहीं ले जाओगे, आज खाना मैं लेकर जाऊंगी। बाय द वे आज फास्टिंग है ना, कुछ समय चल सकता है कथा ना, कथा आगे बढ़ सकता है ना, अभी मैं इस पर नहीं आया हूं, अभी तो मैं आज कथा में हिरण्यकश्यप का पूर्व जन्म का तो हो गया, कयाधु के बता रहा हूं, नहीं प्रहलाद के पूर्व जन्म का बताऊंगा, इस प्रकार से कथाएं चलेगी अध्याय वाइज संक्षिप्त में। तो नौकरों से कहा कि तुम लोग नहीं ले जाओगे, आज से आज मैं महाराज का सेवा करूंगी। स्त्रियां जानती है पति को कैसे प्रसन्न करना, सब लोग प्रसन्न होते हैं जिह्वा के द्वारा, जिह्वा के द्वारा खिला करके। तो जो स्त्री अपने पति को प्रसन्न करना चाहती है उसे चाहिए अपने हाथ से भोजन बना करके प्रेम से पति को चमर डुलाते हुए अच्छा अच्छा बात करते हुए प्रशंसा करते हुए पति का और वो खिलाए। लोभी को प्रसन्न करना है तो उसके सामने द्रव्य रखो, धन रखो। अभिमानी को प्रसन्न करना है तो उसके सामने प्रशंसा करो। एक बार राजा भोज ने कालिदास से यही बात पूछा कि चीनी से भी ज्यादा मीठा कौन वस्तु है, तो कालिदास ने उत्तर दिया था प्रशंसा। इसलिए चेतन महाप्रभु कहते हैं अमानिना मान देना कीर्तनिये सदा हरि। तो मैं पति प्रसन्न करने का बात कर रहा था, और सबके बड़े पति कौन है, कृष्ण, तो वो भी प्रसन्न होंगे कैसे, सबके लिए कहीं है, खिलाओ फर्स्ट क्लास का महाप्रसाद, प्रसाद भोग बला करके, राम रूप कहां है, फर्स्ट क्लास महाप्रसाद, भगवान को जो भोग लगता है फर्स्ट क्लास में, जो बनाने वाला है भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो उसका मन भगवान मिला, भगवान को प्रसन्न करने में लगा रहना चाहिए, नहीं वहां मन रहेगा तो स्वीट राइस में नमक डाल दोगे तो प्रसन्न होंगे भगवान। तो पति को प्रसन्न करने के लिए अच्छा तरीका है अच्छा भोजन कराना। तो कयाधु गरम गरम पकौड़ा बनाकर लेकर गई मिर्चा वाला, क्योंकि हिरण्यकश्यप तामसी प्रवृत्ति का है ना, थोड़ा तो गरम पकौड़ा अच्छा लगता है, ज्यादा मुंह जलता हो, तामसी प्रकृति का हिरण्यकश्यप है। चमर डुला रही थी और हिरण्यकश्यप को अच्छा लग रहा था कि कम से कम पहला दिन है कि मेरी पत्नी अपने हाथ से खिला रही है मुझे, अब तक से नौकर खिला रहे थे। हिरण्यकश्यप धीरे धीरे खुश हो रहा था और प्रशंसा करने लगी हिरण्यकश्यप का, हनुमान जी ठीक है ना, आज फास्टिंग है। तो प्रशंसा करने लगे कि महाराज आप कितने महान हैं, इंद्र चंद्र वरुण सूर्य सब देवता कांपते हैं आपसे। अरे आपके भाई का तो कहना ही क्या था, वो तो आपसे ही महान थे, क्योंकि भाई के लिए उनको बड़ा प्यार था। तो हिरणाक्ष का प्रशंसा की, हिरणाकश्यप का प्रशंसा की और कही कि मैं जानती हूं कि जो बात आप ठान लेते हो वो बिना किए आप रहते नहीं हो। आपने आज सुबह तपस्या का ठान लिया था, देखा कैसे एक दिन में आपका तपस्या पूरा हो गया। हिरणाकश्यप का जहन्नम में जाने तपस्या तेरा, तपस्या हुआ ही नहीं। कहा क्यों, क्या हो गया? कार्य मत पूछे, बड़ा गड़बड़ हुए आज। अब हिरणाकश्यप मूड में आ गया था, थोड़ा खुश हो रहा था। क्या गड़बड़ हो गया? अरे पता नहीं क्या हुआ, जब मैं तपस्या करने बैठा, वहां खड़ा होकर तपस्या कर रहा था, तो एक तोता नारायण 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 कहने लगा। तो का क्या कहा? अरे नारायण 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 कह रहा था। का तोता कहा नारायण? कहा तो नहीं जानती है, तोता भी नारायण कहते हैं, नारायण नारायण नारायण। अब 20-25 बार नारायण नारायण कह दिया है हिरणाकश्यप। अब बड़ी खुश हो गई थी, कह दो वाह हमारा पति कम से कम नारायण का तो नाम ले रहा है। अरे धर्म पत्नी वही है जो अपने पति को धर्म में लगाए। तो कयाधु असली धर्म पत्नी थी, अपने पति को नारायण के नाम, ऐसे तो नाम लेने वाले थे नहीं वहां से, मिस्टर हिरणाकश्यप ऐसा नाम लेवा नहीं थे, तो इसी बहाने। अब जब खा पी लिए, अब जब शयन कक्ष में आए तो वहां भी पूछने लगी कि महाराज उस समय मैं खाना परोस रही थी, वो आप कुछ बता रहे, तोता कुछ बोल रहा था, मुझे समझ में नहीं आया क्या तोता बोल रहा था है? तो वहां भी रटवाना शुरू कर दिया, नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से 108 बार कयाधु और हिरणकश्यपु नारायण का कीर्तन किए। कितने बार? 108 बार। और उसी दिन गर्भाधान संस्कार हुआ कयाधु का, और इसीलिए कयाधु के गर्भ में कौन आए? नारायण के भक्त प्रहलाद, प्रहलाद जी वहां पर आए। अब प्रश्न उठता है कि प्रहलाद जी असुर परिवार में कैसे आ गए? इसका वर्णन पद्म पुराण में थोड़ा सा हुआ है और अन्यत्र नरसिंह पुराण में भी इसका वर्णन है कि जब नरसिंह भगवान बड़े प्रसन्न हो गए तो उस समय प्रहलाद जी पूछे थे कि भगवान कैसे आप मुझ पर इतना प्रसन्न हुए, मैं तो असुर परिवार का कैसे आप ऐसा। तो आप बताए कि तुम पूर्व जन्म में बसु नाम के एक बड़े ही विद्वान ब्राह्मण के पुत्र थे। अवंतिक में एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था बसु और उनके पत्नी का नाम था सुशीला। बसु और सुशीला के 5 संतान थे, 5ों में से छोटे संतान थे उनका नाम था वसुदेव। 4ों संतान बड़े होनहार बच्चे थे, प्रखान विद्वान थे। बसु का नाम बहुत था, धन दौलत बहुत था, अजामिल के बाप जैसा, धन दौलत कमी नहीं थी। एक छोटा बच्चा था, सबसे छोटा, छोटे बच्चे बाप मां के प्यारे होते हैं ज्यादा, बड़े बड़े हो जाते हैं ना, छोटे छोटे रहते हैं। अब बड़े बाप के बिगड़े संतान हो गए बसु, धन था ही, बाप मां का प्यार था। अब इनका बड़ा खराब आदत हो गया, वेद पुराण गीता भागवत कुछ पढ़ना सब बंद कर दिए, कुछ नहीं करते थे। ये वेश्यावृत्ति में लग गए, वेश्यावृत्ति में लग गए और एक वेश्या से इतने आसक्त हो गए कि एक दिन झगड़ा हुआ और रात के दिनों विद्या घर छोड़कर के जगह छोड़कर के चली गई, भाग गई और ये पीछे पीछे दौड़े जा रहे थे। रात्रि के समय में, उस समय टॉर्च लाइट नहीं था, बिजली नहीं था, सब नहीं था, अंधेरी रात थी। विद्या को खोते 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 रात भर कहीं पता नहीं चला। एक नरसिंह भगवान का मंदिर था, उस दिन नरसिंह चतुर्थी था, नरसिंह भगवान का विभाव तिथि का दिन था। तो उस दिन पूरी रात ये फास्टिंग किए और मैं सुना हूं, पढ़ा नहीं हूं, सुना हूं कि उस रात्रि वेश्या के साथ इन्होंने समागमन भी किया। तो चूंकि नरसिंह चतुर्थी की रात दोनों फास्टिंग किए थे, भगवान नरसिंह के मंदिर में रहे थे, इसलिए इन्हें भगवान नरसिंह की भक्ति प्राप्त हुई थी। लेकिन वेश्या से समागम करने के चलते, आश्रित कार्य के चलते इन्हें असुर परिवार में जन्म लेना पड़ा और वेश्या अप्सरा बन गई। तो एनीवे, तो इस प्रकार से अब आते हैं प्रहलाद का। अन्यत्र आगमा में भी इसका वर्णन किया गया है कि नरसिंह भगवान का आविर्भाव हुआ था। पता नहीं अन्य जगहों पर, साउथ इंडिया वाले सब क्लेम करते हैं कि वहीं पर हुए थे, लेकिन विष्णु पुराण में और पंड पुराण में वर्णन किया गया है कि पश्चिम दिशा के में शाम के समय भगवान आए थे ना, जब सूर्य पश्चिम दिशा की तरफ जा रहे थे, तो पश्चिम दिशा के मूल स्थान, यहां पर जो मूल स्थान है उसको आज लोग मुल्तान कहते हैं। मुल्तानी मिट्टी जानते हो ना, ये पंजाब में पड़ता है। और चूंकि नरसिंह भगवान वहां पर आए थे, इसलिए मुल्तान वाले जितने हैं ना, वो अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं, ए सिंह, ओ सिंह, जितने सरदार जी लोग सब सिंह लगाते हैं, उधर सिख लोग जितने सब सिंह लगाते हैं, ए मुल्तानी सिख, पाकिस्तान में भी कुछ पड़ गया है मुल्तान। एनीवे, तो मुल्तान नाम से वह प्रसिद्ध हुआ स्थान, और पंजाब में है, कुछ लोग साउथ इंडिया में कहते हैं। एनीवे, भगवान आए थे। तो अब इसके बाद हिरण्यकश्यप उधर तपस्या करने चले गए थे। तपस्या करने के बाद जब आए, तपस्या किए और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए। ऐसे पद्म पुराण में भगवान शिव पार्वती जी से बात कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ दूसरा ही कथा है। वो कथा मैं छोड़ दिया हूं विष्णु महाराज को बताने के लिए, बताएंगे आज शाम को, मैं टच नहीं करूंगा उसको, आप ही बताना आज का महत्व क्या है। तो सब मैं चाहता हूं कि पूरा सातवां स्कंध का समरी खत्म कर दूं। एनीवे, तो दूसरा अध्याय हो गया। तीसरा अध्याय, वो तपस्या किए और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से वरदान मांगे, जो आप लोग सब जानते हो, सबके जिह्वा पर है, दी में न मरू, रात में न मरू, ऐसे नहीं मरू, अमृत का वरदान एक तरह से मांग लिए। उसके बाद अब शासन करना शुरू किए। घर आए, कयाधु प्रहलाद को लेकर के आई, बड़े खुश थे प्रहलाद, आह्लाद थे, आनंद थे प्रहलाद, प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद। आह्लाद मतलब आनंद और प्रहलाद मतलब प्रकृष्ट, जो सबसे ज्यादा आनंद है। हिरण्यकश्यप के कई एक पुत्र थे, छोटे पुत्र थे प्रहलाद, बहुत प्यारे पुत्र थे, इसलिए इनका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद आह्लाद दायने, प्रहलाद जी कौन है, आह्लाद देने वाले हैं। प्रहलाद जी का क्या ही सुंदर गुण है, बड़े बृहद भागवतामृत में वर्णन किया गया है कि जब नारद जी शुद्ध भक्त का अनुसंधान कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे कि शुद्ध भक्त कौन है, तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं शुद्ध नहीं हूं, भगवान शिव शुद्ध हैं। शिव जी के पास गए, नारद जी ने कहा आप गलत रास्ते पर आ गए हो, ये एड्रेस ठीक नहीं है। अरे सबसे महान भक्त तो प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद के समान कोई श्रेष्ठ नहीं है, न ब्रह्मा है न मैं हूं न तो लक्ष्मी जी ही है। नारद जी को आश्चर्य हो गया, ऐसे कैसे कह रहे हो आप, लक्ष्मी जी तुमकी प्रिया है, कालो भूल गए। अरे जब नरसिंह भगवान आए थे तो कोई उनको मना नहीं पाया था, कौन मनाया था, प्रहलाद, तो श्रेष्ठ कौन हुआ, प्रहलाद। अरे नरसिंह भगवान तुमने सब कुछ देने के लिए तैयार थे, मुक्ति उक्ति जो चाहिए सब देने के लिए तैयार थे, लेकिन प्रहलाद ने मांगा क्या, प्रहलाद ने कुछ नहीं मांगा। यदि मांगे भी क्या मांगे हैं, नाथ जन्म सहस्रेशु एसु एसु ब्रजामि अहम तेसु तेसु अच्युता भक्ति अच्युता तू सदा त्वयी। कहते नाथ जन्म सहस्रेशु, हे प्रभु मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, कहते जन्म चाहिए। नाथ जन्म सहस्रेशु, एक नहीं हजार जन्म मुझे मिले, मुक्ति नहीं चाहिए। भगवान चित्रमा पर वही कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतार भक्ति अहेतु। जन्म जन्मांतर तक आपका भक्ति में है, वही कहते हैं नाथ जन्म सहस्रेशु, एक नहीं हजारों जन्म होता रहे, एसु एसु ब्रजामि हम, हजारों जन्म होता रहे जन्म मैं लेता रहूं, तेसु तेसु अच्युता भक्ति, हे प्रभु उन जन्मों में आपके चरणों में अचला भक्ति बना रहे, अच्युता मैं च्युत न होने पाऊं, मैं भक्ति से मेरा पतन न हो जाए, ऐसा भक्ति। तो आज का वह दिन है कि आप हम सब लोग नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। दोहराइए हमारे पीछे, नाथ जन्म सहस्रेशु येसु येसु ब्रजामि अहम् तेसु तेसु अच्युता भक्ति अच्युत तू सदा त्वयी। तो दो चीज कह रहे हैं, बल्कि तीन चीज, एक कह रहे हैं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, जन्म होता रहे हजारों जन्म होता रहे, दूसरा मुझे उस जन्म में हे अच्युत आपकी अच्युता भक्ति मिले, वह भक्ति जो कभी नष्ट न हो, और मेरा मन हमेशा अच्युत रूप से आप में ही लगा रहे। तो भगवान शिव ये बात कहते हैं कि ये प्रहलाद हैं, प्रहलाद इतने श्रेष्ठ हैं, तो वे प्रहलाद आनंद के कारण थे। चाणक्य पंडित कहते हैं कि वह बाप 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 मां नहीं है, अपने संतान का दुश्मन है जो अपने बच्चे को पढ़ाता नहीं हो। बच्चों को पढ़ाना चाहिए, असुर भी जानते हैं, हिरण्यकश्यपु भी जानता है, और प्रहलाद के प्रति इतना आनंद था, प्रहलाद के प्रति कितना प्रेम था, ये प्रहलाद हैं आह्लाद देने वाले, उनको भी पढ़ने के लिए भेजा। शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमरक दो पुत्र थे, उनके पास पढ़ने के लिए भेजा। तो इसका व्रण पांचवें अध्याय में किया गया है, हिरण्यकश्यपु के यहां प्रहलाद का पढ़ाई लिखाई का। तो दो बार इनकाउंटर हुआ है प्रहलाद का हिरण्यकश्यपु से। कुछ समय के बाद हिरण्यकश्यपु प्रहलाद के बिना रह नहीं सकता था, बुलाया प्रहलाद जी को, पूछा जंगे पर बैठा कर बड़ा प्रेम से पूछा कि बेटा बताओ तू हमसे इतना दिन तक अलग रहा है, गुरु गृह गया है पढ़ने के लिए, बेटा बड़ा कष्ट हुआ तुम चला गया यहां से, बताओ कि तू क्या सिखाए अच्छा चीज, आखिर इतना दिन हमसे तुम अलग रहा है, मुझे बहुत दुख हुआ है, तो कम से कम संतावना देने के लिए बताओ तुम अच्छा चीज क्या सीखे हो। तो इस प्रकार से जब हिरण्यकश्यप ने पूछा, एकदा असुररात पुत्रांक आरोप्य पांडव प्रपक्ष कथताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। हे महाराज युधिष्ठिर, नारद जी कह रहे हैं, एक दिन की बात है, असुर राज हिरण्यकश्यप अपने जंघे पर अपने पुत्र प्रहलाद को बैठा करके प्रेम से कह रहा, प्रपक्ष प्रकृष्ण अच्छा तरह से प्यार से सिर सहलाते हुए पूछा, क्या कथ्यताम वत्स मन ने साधु यद भवान, हे पुत्र तुम पढ़े हो उसमें से मन्यता जो पढ़े हो मैं जानता हूं सब अच्छा नहीं होगा, लेकिन जिसको तुम अच्छा मानते हो, हम डेली पढ़ने जाते हैं, जो टीचर प्रोफेसर पढ़ाते हैं सब दिमाग में नहीं जाता है, एक सब एक क्लास हो रहा है यहां पर सुन रहे हो, ये कोई जरूरी नहीं कि सब लोग जो मैं बोला सभी याद हो जाएगा, एक शब्द भी याद हो जाएगा वो याद रहेगा। तो हिरण्यकश्यप वही बात कह रहा है, जबरदस्ती नहीं कर रहा है तुम तोता के समान रिपीट करो जो सुने हो, ये कहता है कथ्यताम वत्स मन्यते साधु, जिसको तुम अच्छा लगा है जिसको तुम अच्छा समझते है वही बात तुम मुझे यद भवान बताओ। और प्रहलाद जी को पहला अवसर मिला है प्रचार करने के लिए, और प्रचार किसको कर रहे हैं, हाई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, अपने बाप को, वो बाप ही नहीं है वो असुर राज है। प्रभुपाद जी चाहते थे हाई सेगमेंट साइंसिस्ट, भक्ति स्वरूप दामोदर मां को कितना लिखे कि साइंसिस्ट लोगों को, पॉलिटिशियन लोगों को हाई सेगमेंट है, तो कार इन लोग प्रचार हो जाएगा तो आईआईटी वालों, कितने आईआईटी हाथ रहा, आईआईटी वाले कितने यहां पर हैं, कोई आईआईटी, हाँ इन लोग प्रचार करो और राजा का प्रचार करो, सब लोगों को वो आईआईटी और भक्त बने, सब भक्त बन जाएंगे, तो ये हाई सेगमेंट वाले हैं। तो प्रहलाद महाराज प्रचार करना शुरू किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द किंगडम, राजा को प्रचार कर रहे हैं, ये राज विद्या है ना, तो राजाओं को ज्ञान देना चाहिए। कहते हैं तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्धि असद्ग्रहाय हित्वा तपातम गृह अंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। कहते हैं असुरवर्य देहिनाम, यहां पर एक गुरु और चेला का बात हो रहा है, पूछे हैं कुछ बताओ अच्छा चीज, तो अच्छा चीज किससे पूछा जाता है, अच्छा चीज जानना हो हित का वस्तु जानना, साधु मतलब हितकारी, तो हितकारी बात पूछे हैं हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से कि वह बात बताओ जो हितकारी हो और तुम्हें अच्छा लगता हो, हितकारी बात हमेशा अच्छा ही लगता है, जो अहितकारी बात होता है सज्जन व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है, तो हितकारी बात बता रहे हैं। जैसे अर्जुन जब कृष्ण के शरण में गए और कहे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नः, जब कृष्ण गुरु का पद प्राप्त किए तो तुरंत डांटना शुरू कर दिए, सोच्यानम सोचस्तम प्रज्ञावादा मूर्ख, कहीं का बड़ा बड़ा बात करता है तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है, यही कहे ना। अब वही बात यहां पर समझा रहे हैं प्रहलाद जी, शिक्षा दे रहे हैं, तो यहां पर पिता उता कुछ नहीं कहते हैं, कहते हैं असुर वर्ज दे ही नाम, हे असुर राज असुरों में श्रेष्ठ से, मतलब राजा को प्रचार कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, हे असुर राज बड़ा अच्छा आपका बुद्धि हुआ, आप कम से कम अच्छा प्रश्न किए, सदा समुद्र असत ग्रहाय, पहले ये जान लिया खराब चीज क्या है, जब खराब चीज जानो तो अच्छा मजा आएगा, वो खराब क्या है कि जो असत वस्तु है ये देह, देह गे धन संपत्ति ये असत वस्तु है, जो व्यक्ति देह गे धन संपत्ति में आसक्त रहेगा सदा सम उद्विग्न धिया, उस व्यक्ति का मन बुद्धि 24 आवर डे कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब रहेगा। तो दैहिक आसक्ति, संसारिक आसक्ति, ये असाधु है। असत चीज को सत्य मानना ये खराब है। अच्छा चीज क्या है? हित्वात अपातम गृह अंधकूपम, घर गृहस्थी छोड़ो, धन दौलत छोड़ो, पति पत्नी सब छोड़ो, छोड़ो सब कुछ और हरे कृष्ण मंदिर में चलो। हित्वात पापम गृह अंधकूपम बनम गतो यस, बन में जाओ, बन जहां पर खूंखार जगह है। ये हरे कृष्ण मंदिर खूंखार जगह है, यहां पर संसार का बात नहीं होता है, यहां भगवान का बात होना चाहिए। भगवान का बात संसारियों के लिए खूंखार है, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। मंदिर में भगवान का नाम होता है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम राम राम, हरिमाश्रय। तो भगवान के धाम में जाओ, वृंदावन जाओ, मंदिर में जाओ और भगवान का शरण ग्रहण करो। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यपु को गुस्सा आ गया और उसके भ्रुकुटि खड़ा किया। सुत्वा पुत्र ग्रो दैत्य परपक्ष समाहिता, जहां स बुद्धि बाला नाम विद्यते परम बुद्धि भी। गुस्सा आया लेकिन प्रहलाद डर न जाए इसलिए हिरण्यकश्यपु मजाक में उड़ा दिया, हंसी, अरे छोड़ा तू बालक, तुम्हारा बुद्धि ऐसे खराब कैसे हो गया है? लेकिन भ्रुकुटी दिखा दिए उधर संड और मर्क को, तो क्या सिखा रहे हो तुम लोग, ये कांप रहे थे वहां पर है। और लेकर गए, अब बड़ा समझाए पहले प्रहलाद को, ये लोग कहते हैं बड़ा समझते हैं, वत्स प्रहलाद भद्रम थे सत्यम कथम मामृष, हे बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, बेटा झूठ मत बोलना, हम लोग तुम्हारे गुरु हैं, सब सच बताना। बालान इति कुतस्तुभ्यम एसम बुद्धि विपर्य, अरे अन्य बालकों का तो खराब बुद्धि नहीं हुआ, ये तुम्हारा बुद्धि कैसे खराब हो गया? अरे हम लोगों का बुद्धि खराब है, इनडायरेक्टली वही कह रहे हैं ना कि हमारा तुम्हारा बुद्धि अच्छा हो गया, इनडायरेक्ट तुम्हारा बुद्धि अच्छा कैसे हो गया, हम लोग तो खराब है सब लोगों का, लेकिन कहने का तरीका अलग है। कहते हैं बेटा तुम कुल नंदन हो, पिताजी तुम्हारे कितना तुम्हारा सम्मान करते हैं, बेटा ऐसा मत करो। तो थोड़ा समझाए समझाए, लेकिन वे लोग प्रहलाद जी फिर उन लोगों को प्रचार करने लगे। पहले तो प्रचार बाप को किए, अब गुरु लोगों को प्रचार करेंगे, शिक्षा देने वाले हैं ना, तो इनको प्रचार किए। अब उतने पर गुस्सा कर करके कहे कि ये लोग अब ऐसे नहीं मानेगा, ये बदमाश हो गया है। अब गुस्सा करते हैं, अनियताम अमरे बेत्र, अरे असुर बाल को वो बेत लेकर के आओ, पहले पढ़ाई होती थी ना, वो छड़ी होता था, वो छड़ी लेकर के आओ, एक कुलंगार है, इसकी बुद्धि खराब हो गई है, इसको हम अब दंड देंगे, तब सीखेगा। एनीवे इस प्रकार से वो लोग सिखाने का प्रयास किए। प्रहलाद जी सोचे कि इन लोगों से ये लोग समझेंगे नहीं, इनका बॉल फ्रीज हो गया है, कुछ जाएगा नहीं अंदर, तो छोड़ दिए, प्रचार नहीं किए। अब जो कह रहे थे रटर पढ़ने लगे। कुछ समय के बाद देखे कि तो प्रहलाद अच्छा हो गया है, तो बड़े खुशी से प्रहलाद को लेकर गए। इस बार पहले बार तो बुलाए थे, इस बार लेकर गए बड़ा प्रेम से कि महाराज देखो हम आपके बेटे को पढ़ा कर लाए हैं, अच्छा पढ़ कर आया है। तो हिरण्यकश्यपु बड़ा खुश हुआ है, गुरु लोग भी खुश रहते वाह अब सब सब पढ़ लिया है, क्योंकि प्रहलाद महाराज जो कहते थे रिपीट करते थे, अच्छा नहीं मानते थे लेकिन रिपीट करते थे, ना साधु मन ने अच्छा नहीं मानते रिपीट करते थे। और हिरण्यकश्यपु बुलाया, कहा कि बेटा बताओ है? बताओ क्या यह शिक्षक गुरुर भवान, तुम्हारे गुरु ने जो सिखाया है वो हमको बताओ। अब गुरुओं ने सिखाया है, पहले उनसे पूछे थे कि तुम क्या अच्छा मानते वो बताओ, तो जो अच्छा माने थे बता दिए। अब कहा तो गुरुओं ने क्या सिखाया, गुरुर भवान गुरु ने क्या सिखाया है, उसने कौन गुरु का नाम लू, तो हमारे पहले गुरु तो नारद जी है ना, है पहले गुरु नारद जी है ना, तो नारद जी ने सिखाया बता दिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितः विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियते भगवत भगवत अभिवद्धा तन्मन्ने अधिक अधिक उत्तमम्। ताकि गुरु जी ने ही हमको सिखाया है श्रवणम कृतम नवधा भक्ति। अब इतना सुनते ही हिरण्यकश्यपु का आग बबूला हो गया। अब गुरु के पुत्रों को खूब फटकारने लगा, जीभ काटते हुए गाली देते हुए जो कहना था एक ब्रह्म बंधु कितने मनते विपक्षम त्रेता असता असारम ग्राहितो बालम। तुम दुष्ट लोग हो, खाते हो हमारा नमक हराम कहीं का, खाते हो हमारा और गुणगान करते हो हमारे शत्रु का, तुमको लज्जा नहीं आती है। खूब गाली गलौज किए। अब तो लोग कांप रहे थे, अब कांपते हुए कह रहे हैं न मत्त प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत ए सविंद्र शत्रु नैसर्ग की मतिरस्य राजन नियत क्षमन्यु कददा अस्ममान। कहते हे महाराज क्षमा करें, अब हम लोगों से गुस्सा न किए। न मत्ता परणीत न पर परणीत, हम लोग इसको ऐसा पढ़ाए ही नहीं है। बेचारे सत्य बात बोल रहे हैं, उनको कहां ऐसा ज्ञान है। ज्ञान होता तो पढ़ाएंगे ऐसा, तो ज्ञान ही कहां से पढ़ाएंगे, सत्य बोल रहे हैं। न मत्ता परणीत, तो कह रहे बदमाश तो कोई दूसरा आ गया होगा। कहा नहीं महाराज, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम फर्स्ट क्लास है। संदीपनी कृष्ण प्रभु पका रख करके अपना सिक्योरिटी कैमरा चारों तरफ लगा हुआ है, कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता है। न पड़ा पड़ी तो दूसरा भी पड़ा, हवा भी अंदर नहीं आ सकती हो तो आदमी अंदर दूर रहा। तो कहा तुम हमको मूर्ख बना रहे हो, तो कहां से गया ये, कहां से इसको आ गया। कहे हे इंद्र शत्रु हम क्या कहें, आपके बेटे का दिमाग खराब है, ये जन्म से ही ऐसा है, ये जन्मजात इसमें रोग लगा है, क्रॉनिक डिजीज है इसमें, ये क्रॉनिकली हरे किस्म वाला हो गया है, इसके लिए आप हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब नारद जी कह रहे हैं कि प्रहलाद जी देखे कि बेचारे गुरु पुत्रों का फजीहत हो रहा है, और गाली गलौज सुन रहे हैं, ब्राह्मणों को गाली देना अच्छा नहीं है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, और प्रहलाद जी कहते हैं कि ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं पिताजी, चिंता मत करो, इन लोगों के बस की बात नहीं है। मति न कृष्णो परत सतोवा, अरे जिनका घर गृहस्थी में बुद्धि लगा हुआ है, जिसका कृष्ण में मति नहीं लगा, वो कहां ऐसा ज्ञान जानते हैं, इनको छोड़ दो, ये लोग नहीं कर सकते हैं। अब इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने जो ज्ञान दिया, अब यह ज्ञान सुन करके बहुत गुस्सा में हुआ प्रहलाद, अमीनु सुना, फिर कहा कि ठीक है ले जाओ, इस बार अच्छा से पढ़ाई कराओ, इसको देखना। अब ये लोग गए, इस प्रकार से पांचवां अध्याय खत्म हो गया। प्रहलाद चले गए फिर से स्कूल में, छठा अध्याय प्रारंभ हो रहा है, दैत्य बालक के भयो प्रहलाद उपदेश। अब एक दिन की बात है, ये जो गृहवर्तानाम, ये लोग कैसे थे सन अमर का गृहवर्तानाम, घर गृहस्थी वाले थे। अब इन लोगों को आलू टमाटर खरीदना था। आप लोग जानते होंगे पहले जमाने में जो पढ़ाई पढ़े होंगे, चतुर्भुज प्रभु आपको याद होगा, चतुर्भुज है ना, हमें याद है, हम मिडिल स्कूल में थे तो हमारे एक इतिहास के टीचर थे, वो आते थे और बेंच पर सो जाते थे, कहते थे रमेश इधर आओ, हाँ गुरुजी, पैर दबाओ, पैर दबा रहे हैं, शनिवार का दिन हो गया, कौन आटा लाया है, कौन आलू लाया है, चलो स्कूल पोतो, सब गाय गोबर से स्कूल पुताई करो, करते थे ना। अब जो आटा चावल जो लाए हैं, खिचड़ी बनाओ, आधा इधर रखो खिचड़ी बनाओ, तो आधा से बनाकर भक्तों बांटते थे बच्चों को, और आधा गुरु जी लेकर ले जाते थे घर पर अपने। तो गृह बरताना, तो ये संड और अमर गृहवर्ती थे, तो ये लोग भी चले गए कहां पर अपना टमाटर आलू खरीदने के लिए। प्रहलाद जी को अवसर मिल गया और प्रहलाद जी ने पक्का प्रवचन कर दिया, कौमार आचरित प्राग्नो धर्मान भागवतानिह। अब खूब सुंदर प्रचार किए प्रहलाद जी, खूब सुंदर प्रचार किए, प्रचार सुन करके ये लोग बड़े गदगद हो गए, गदगद हो गए सब बच्चे लोग, और पूछने लगे प्रहलाद से, कह रहे पट्टा प्रहलाद ये बताओ यार, तू ये गान इतना अच्छा कहां सीख लिया? हम लोग भी जन्म लिए वहीं पर, हमारे सामने तू जन्मा हुआ। प्रहलाद तुम वयम चापी नरते अन्य विदते गुरु, अरे इस जेल में तो गुरु के अलावा कोई है नहीं, और वही संड अमर यही पढ़ाने वाले हैं। एताभ्याम गुरुभ्याम गुरुपुत्राभ्याम बालानापि ही ईश्वर, अरे जितने बालक हैं इनको ही अपना सर्वस्व मानते हैं, संड और अमर को ही, यही हमारे ईश्वर हैं, हम बताने वाले हैं। ये तू बताओ ऐसा ज्ञान तुम्हें कहां से हो गया, ऐसा ज्ञान तुम्हें कहां से हो गया? तब प्रहलाद जी सातवां अध्याय में कहते हैं, मातृ गर्भे स्तस्य प्रहलादस्य देवर्षि नारद मुखा उपदेश श्रवणम, कहे जब पिताजी चले गए थे तपस्या करने के लिए, माता कयाधु अकेली थी, उस समय मैं माँ के गर्भ में था और हिरण और इंद्र बड़ा भयभीत हो गया था कि एक हिरणकशिपु तो इतना परेशान कर रहा है, दूसरा हिरणकशिपु एक और परेशानी होगी, तो मेरे माता का वो हरण कर ले जा रहा था, मेरी माता असहाय होकर के और प्रार्थना कर रही थी रक्षा के लिए। उस समय हमारे गुरुदेव आए देवर्षि नारद, और वे हमारी माता का रक्षा के इंद्र से, और इंद्र कहा कि नहीं नहीं महात्मन, इसके गर्भ में एक असुर संतान है, इसको मारना है, इसको नहीं कुछ करेंगे, इसके संतान को मारेंगे। तब नारद जी ने कहा, तरे मूर्ख कहीं का, तुम नहीं जानता इंद्र, यही संतान तुम लोगों के मुक्ति का कारण होगा, उस हिरण्यकश्यपु से के दुख से छुटकारा यही संतान दिलाएगा, तुम जाओ छोड़ दो, मैं इसको अपने आश्रम ले जाए। तो इसको मेरे माँ को प्रहलाद नारद जी आए लेकर आए, मेरी माँ सेवा कर रही थी, साधु महात्माओं का सेवा कर रही थी, और साधु महात्मा जो कथा कहते थे हम सुनते थे, हम उनका उचित प्रसाद ग्रहण करती, मेरी माँ करती थी, हमें प्राप्त होता था। कभी कभी माँ सो भी जाती थी, लेकिन मुझे भगवान में ललक लग गई थी और मैं कभी सोता नहीं था, हमेशा एकांत भाव से सुनता रहा। इस प्रकार से मैं अपने गुरुदेव से यह सब ज्ञान सुना है अपने माँ के घर में, तो बहुत सुंदर ज्ञान वहां पर दिए। और उसके बाद में अब कीर्तन शुरू हुआ, प्रवचन के बाद कीर्तन होना चाहिए, प्रभुपाद जी भी यही करते थे, प्रवचन कर्मचन श्याम ये करते थे ना, कीर्तन होना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज अब लगे कीर्तन करने, सभी लोगों के साथ में सब खड़ा होकर के और हाथ उठा करके नाचने लगे, नहीं अभी नहीं साथ में। अब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज कीर्तन कर रहे थे, सब बालक लोग प्यूरिफाइड हो गए थे, अब भगवान प्रहलाद महाराज के हृदय में हैं। प्रहलाद महाराज का शरीर और बालकों का जो शरीर था, बालक ऐसे भी निश्चल होते हैं, ये प्रहलाद महाराज सुने तो उनका पूरा शरीर कृष्णमयी हो गया था, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिफाइड हो गया था। अब एक गुरु आए संड और अमर, देखे तो नाच गा रहे हैं सब, हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, अब कितना भी चिल्ला रहे हैं इन लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा है, ये नाच गा रहे हैं। तो किसी बालक का हाथ पकड़े, अरे बंद करो, तो हाथ पकड़े तो उनको भी करंट लग गया, वो भी लगे नाचने गाने, वो भी नाचे। अब हिरण्यकश्यपु से रहा नहीं जा रहा था कि भाई बेटे का क्या हो रहा है, वो सेवक भैया जाओ देखकर आओ प्रहलाद का पढ़ाई सराय ठीक चल रहा है कि नहीं, जरा कि नहीं देखकर आओ। वो सेवक आया, देखा सब लोग नाच रहे हैं, वो भी हाथ पकड़ा, वो भी लगा नाचने, दूसरा सेवक तीसरा सेवक, जितने सेवक आए कोई लौट कर गया ही नहीं। हिरण्यकश्यपु को आश्चर्य हो गया, अब वो स्वयं आया, ये परिदृश्य देखा, सब लोग नाच रहे हैं, सब इलेक्ट्रिफाइड हो गए हैं, नाच रहे हैं। और हिरण्यकश्यपु पकड़ा स्वयं अमर का हाथ, कहा तुम क्या कर रहे हो? इसका बल्ब फ्यूज था तो इसने बिजली जाया नहीं, ये बल्ब फ्यूज हो गया था ना, तो इस पर काम नहीं किया, वो असुर था। बल्ब फ्यूज रहेगा तो कितना भी वोट पावर लगाओ, जब बल्ब ठीक रहेगा तो बिजली रहेगा तो काम करेगा, इसका बल्ब फ्यूज था, काम ही नहीं किया। तब चुप हो गए सब लोग। अब बुलाया, अभी लगे प्रणाम किए लोग, क्षमा मांगने लगे कि महाराज आपका बेटा बड़ा नालायक हो गया है, हम लोग क्या करें, अब देखो ना है, ये सभी बालकों का दिमाग खराब कर देगा, हम लोगों का भी दिमाग खराब कर देगा, इसको जल्दी स्कूल से बाहर निकलवाओ। अब हिरण्यकश्यपु उसको लेकर गया और तब यह हुआ प्रारंभ आठवां अध्याय। ठीक है, अब हिरण्यकश्यपु सातवें अध्याय में ही है। हिरण्यकश्यपु विभिन्न प्रकार से प्रयास किया प्रहलाद को मारने के लिए, आप लोग जानते हो, पढ़ लेना, महाराज से कथा सुन ही रहे हो, इसे मैं संक्षिप्त बताना चाहता हूं कि उसने बहुत प्रयास किया मारने के लिए, लेकिन स्वयं नहीं मारना चाहता प्रहलाद को कभी भी। असुर लोग भी जानते थे, आजकल के असुर के बाप लोग हैं, अपने संतान को जो जन्म भी नहीं लिया है गर्भ में ही गर्भपात करा देते हैं, कितने नीचे हैं। उस समय के बाप ऐसे थे। हिरण्यकश्यपु असुर था, अपने हाथ से नहीं मारा प्रहलाद को, विभिन्न प्रकार से प्रयास कराया, लेकिन सब प्रयास जब फेल हो गया तो प्रहलाद जी से पूछा, हार करके पूछा कि प्रहलाद, हे दुर्बुद्धि, हे दुःविनीत, एक शब्दों का सबका डबल मीनिंग है। प्रहलाद कहता है हे दुःविनीत, जो विनीत न हो। हालांकि प्रहलाद जी बहुत विनीत थे, बहुत नम्र थे, पिता के सामने हां जोड़कर खड़े हुए हैं, कहते मंदात्मना, हे मंद बुद्धि वाले, कुल भेद कर, तुम खानदान को बर्बाद करने वाला है, हैं? अराधम, हे नराधम, हे अराधम, क्या विशेषता दे रहा है प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु? कहता है दुर्विनीत, इसका अर्थ है जो विनीतों में सर्वश्रेष्ठ हैं, मंद आत्मा, उनकी आत्मा मंद है, संसार में उनका आत्मा नहीं लगा हुआ है, संसार के वस्तुओं में नहीं लगी हुई है। हिरण्यकश्यपु को देखने का भाव अलग है, नारद जी को देखने का भाव अलग है, सुखदेव जी को देखने का भाव अलग है कि मंद आत्मा। हिरण्यकश्यपु भले समझे कि मूर्ख है, कुछ जानता नहीं है, लेकिन मंद आत्मा कि जिसका थोड़ा भी निष्ठा भौतिक वस्तुओं में नहीं है। समझे हनुमान जी ना? ओ हनुमान जी, हरे कृष्णा। तो प्रहलाद जी को मंद आत्मा कहता है, कहते हैं कुल भेद कर, स्वाभाविक है एक कुल जो था, किसका कुल था? असुर कुल था, और उसमें प्रहलाद जी कैसे थे? कुल में भेद करने वाले थे, यानी असुर नहीं थे, ये भक्त थे। और अराधम या नराधम जो भी कह सकते हो, अराधम थे, नराधम थे, नराधम मैं भूल रहा हूं अर्थ क्या बताया गया है, याद है महाराज आपको? ये तो डायरेक्ट मीनिंग है ना, इनडायरेक्ट बताओ ना, छिपा हुआ मतलब। हाँ, ये स्पेकुलेशन ठीक है। अच्छा, हाँ, समथिंग लाइक दैट, जिसके सामने समस्त नर लोग अधम हो वो कहलाते हैं नराधम। विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर, मैं बहुत पहले इसको पढ़ाता एनीवे, कहते हैं अस्तब्धम मत्सासन, अरे तुम्हें डर नहीं लगता है मेरे सासों से? आज मैं तुमको जम के यहां भेज दूंगा। इस प्रकार से कह कर करके और कहा तो प्रहलाद जी खूब प्रवचन किए। अब अंतिम प्रवचन था प्रहलाद जी को अपने पिता का, अब इसके बाद प्रवचन करने का समय नहीं मिला है। प्रहलाद जी अच्छा से प्रवचन किए हैं, उच्चार ही श्लोक में किए हैं, लेकिन बड़ा सारगर्भित। अब इतना सुनने के बाद कहते हैं जिस प्रकार से तितली होती है, पक्षी होती है, बरसात के दिन देखते हैं वो मोट मोट पक्षी कहलाती है ना, वो कीड़े होते हैं ना जो लाइट में आते हैं अपना प्राण गंवाने के लिए लालटेन में या छोटे छोटे, ठीक वैसे ही अब तुम मरना चाहते हो। सही में यह स्व मंद भाग्योक्तो मदन न्यो जगदीश्वर, अरे मेरे अलावा दूसरे को जगदीश्वर मानते हो, कसौ यदि सर्वत्र, वो कहां है, कौन है वो, कहा सब जगह है सब जगह, हाँ सब जगह है। कहते हैं कस्मात असम्यन दिशति, तो एक खम्भा में क्यों लिखा नहीं पड़ा है। प्रहलाद जी कहते हैं हमें छोटे से सुने थे इस बात को, हिरण कश्यप पूछा तुम्हारे भगवान कहाँ है, कहा हम में तुम में खड़ंग खम में घड़गड़ व्यापे राम, हम छोटे में सुने थे इस बात को, रोई बात यहाँ पर वही बात है। कहते हैं कसौ यदि सर्वत्र अकस्मात असम्य न दृश्यते, तुम बिना सिर और धड़ का बात बकवास कर रहे हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं, तलवार निकाल लिया है लेकिन पितृधर्म है, तलवार प्रहलाद के गला पर नहीं जा रहा है, प्रहलाद के गला पर नहीं, हिरण्यकश्यप भी समझ रहा है। हम अंग्रेजी में कहते ना हेट सिन नॉट सिनर, पाप से डरो पापी से नहीं। हिरण्यकश्यप भी सोच रहा है प्रहलाद खराब नहीं है, इसकी बुद्धि खराब हो गई है जो विष्णु भगवान मांग रहा है, तो हम इसके चैलेंज करते हैं, विष्णु नहीं निकलेगा तो इसका बुद्धि ठीक हो जाएगी, फिर हमारा बेटा है। कितना बुद्धिमानी, कितना साइंस, कितना प्रगति था उस समय का साइंस। गला नहीं काटा प्रहलाद का, चैलेंज किया कि भगवान तुम्हारे खम्भे खम्भे दिखाई देने पड़ते हैं। इस प्रकार से अब खम्भे पर प्रहार किया और तब खम्भे से विशाल काय ठास आवाज आया। अब चकाचौंध हो गया तो आवाज कहां से आ रहा, देख रहा है। तब सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक प्रस्तुत करते हैं, सत्यम विधातु निजभित्त भासितम व्यक्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यताम अद्भुत रूप उद्महम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। चंदन तो चंदन कथा में नहीं है क्या? अब यहां पर प्रहलाद जी सॉरी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सत्यम विधातु निजभित्त भासितम, अपने भक्त के द्वारा निजभृत, अपने भृत के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा कहे गए बात को सत्य करने के लिए, सत्य करने के लिए भगवान आए। किन किन लोगों का बात सत्य करने के लिए, चलिए शुरू से चलते हैं। पहला बात है सनत कुमारों का, उन्होंने कहा था कि भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे, भगवान के हाथ से तुम लोग मारो जाओगे, तो उनका बात सत्य करने के लिए। फिर हिरण्यकश्यप तपस्या किया था और तपस्या में ऐसा वर मांगा था, ऐसा वर मांगा था कि ब्रह्मा जी भी चकरा गए थे, कैसा कोई सृष्टि में नहीं किया हूं, ये कहां से होगा। तो ब्रह्मा जी की बात को सत्य करने के लिए, नारद जी की बात को सत्य करने के लिए, ये भगवान के अवतार का कारण है यह श्लोक। सत्यम विधातु निजभित्त भासितम, भगवान नरसिंह देव को आने का कारण क्या है, अपने भक्तों के द्वारा कहे गए बात को सत्य करने के लिए भगवान आए। नारद जी ने इंद्र कहा था कि कयाधु गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वही तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। पता चला कहां है चंदन आए? सरप्राइज
Okay. Who is going to show that video? Okay.
So, इस उसके बाद नारद के बाद सत्य करने के लिए और अर्जुन के बाद सत्य करने के लिए प्रभुपाद तात्पर्य में कोट किए हैं. अर्जुन से भगवान ने कहा, कौन्तेय प्रतिजान ही नमे भक्त्या प्रणश्यति. हे कुंती नंदन, अगर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है, तो कोई प्रश्न करता भगवान ने क्यों नहीं किया, अर्जुन से क्यों कहा? भगवान अपना वचन तोड़ देते हैं, उन पर विश्वास मत करना कभी. भगवान पर कभी तोड़ सकते हैं. प्रणत प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा. भगवान नियम बदल देते हैं, उन पर विश्वास मत करो, लेकिन भक्तों पर विश्वास करो. तो इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहलाया, कौन्तेय प्रतिजाने हि नमे भक्त्या प्रणश्यति. और यहां पर प्रहलाद के बात को सत्य करने के लिए, सत्यम विधातु निज भक्त भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना. अरे भगवान कहां पर नहीं है? व्याप्तिम, ये व्याप्त है, च भूतेषु, समस्त प्राणियों में, चर अचर, जीव नरजीव, सब जगह भगवान हैं. अखिलेषु च आत्मा, सबके आत्मा हैं. अदृश्यताम, अद्भुत रूप उद्भवम. भगवान कैसा रूप धारण किए थे? अदृश्यता, ऐसा रूप कोई नहीं देखा था. और अद्भुत का व्याख्या कई एक प्रकार से हो सकता है. सामान्यतया बालक जो होते हैं वो बाप और माँ से जन्म लेते हैं. भगवान खंभा से जन्म ले लिए, खंभायन का बाप माँ हो गया, ये अद्भुत नहीं है? प्रायः बच्चे जन्म होते हैं तो मनुष्य के समान, मनुष्य के बच्चे होंगे मनुष्य के समान, पशु के बच्चे पशु के समान. यह बच्चा ना पशु था ना मनुष्य था, ये अद्भुत नहीं हुआ? अद्भुत हुआ ना. यह कैसे आए? हिरण्यकश्यप को चैलेंज पर आए, ये भी अद्भुत है. भगवान क्या पड़ा चैलेंज पर आने के लिए? क्यों आए? भक्तों का रक्षा करने के लिए, ये भी अद्भुत है. तो सब कुछ अद्भुत है भगवान के विषय में. भगवान अद्भुत हैं. अपने अद्भुत यहां कथा में आए कि नहीं? नहीं, वो दूसरा वाला अद्भुत, झारखंड वाला. अच्छा, आया फिर. ओके, वहां भगवान का. तो अस्तम्भे सभायाम न मृगम न मांसम. अस्तम्भ से भगवान प्रकट हुए थे, न वे मृग थे और न मनुष्य थे. तो संक्षिप्त में ये श्लोक का मैं मीनिंग कल बताया हूं, व्याख्या नहीं किया हूं, तो समय भी हो गया है. मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करूंगा. 5 मिनट का एक वीडियो है जो प्रभुपाद जी के प्रसन्नता के लिए कानपुर में हम लोगों ने किया था, एक्सप्रेशन प्रोग्राम. तो भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव तिथि है, तो भगवान नरसिंह देव की प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, आप लोगों की प्रसन्नता के लिए ये 5 मिनट का है. आर यू गोइंग टू रेडी? वो दिखाएंगे और उसके बाद में अन्य जो 7 अध्याय हैं संक्षिप्त में रन थ्रू कर दूंगा, पूरा कर दूंगा. कोडलेस माइक. ओके, 9वां अध्याय जो है हो गया. शुरू कर दो.
सब तैयार हो गया था, पूरा शाम को सब रेडी हो गया था, इनको हम लोगों ने डेमो भी दे दिया था. Christian festival was supposed to take place last Saturday, but due to climatic problems, रात में करीब 12:30 बजे मंदिर बड़ी किए जाए स्ट्रॉम द होल सिटिंग वॉट हैज स्टैटर्ड पलट गया पूरा पूरा बहुत नुकसान हुआ यहाँ पे सारी कदे स्पीकर और एलईडी सब पूरी सब गिर गया सब तो फिर से इसको त्याग किया गया फिर बनवा फिर But the Buddha devotees always take everything in a positive way.
पानी का प्रयोग बंद होता है
लेकिन मछली है
क्या कारण क्या है
कि उस मछली पानी का शरण ली है
ठीक वैसे ही अपने जीवन में यदि हम भी कृष्ण का शरण रहेंगे तो हमारा लाइफ इंश्योरेंस कंप्लीट हुआ
Finally, they have arrived. We have Expression 2018 at DISCON Kanpur campus. Everybody is very enthusiastic and we are hoping and expect participation in this program.
Bole Hare Krishna! Business ka purpose kya hai? Long term ke liye aapko agar kamai karni ho, right values, right principles follow karne padenge.
मेरा आने का जो कारण है जब प्रभु जी ने मेरे को बोला कि करीब करीब 8 से 10 हजार स्टूडेंट इस प्रोग्राम में आते हैं और लास्ट 3 साल से एक्सप्रेशन 16-17 और आज 18 This is the third year of this program. I was really excited to come and actually to discuss and meet with you.
Learn from the mistakes. आपने जो गलती की जो आपको एक्सपीरियंस हुआ जो भी कुछ हुआ उससे लर्न कीजिए कि क्या हुआ Second, always have a right company. आपके दोस्त आपके आसपास के एडवाइजर्स आपके टीचर्स जो भी कोई हो वो हमेशा अच्छे लोग होने चाहिए समझदार लोग होने चाहिए वो ही आपको आगे लेके जा सकते हैं तीसरा यू शुड बी डिसीजन जिंदगी में कई गलतियां करेंगे लोग लेकिन हमें डिसीजन लेकर आगे बढ़ना चाहिए ये 3 मूल मंत्र मेरे जिंदगी के जिसे बोलते हैं कि खास कारण बने जिसे आज मुझे जिन 3 मूल मंत्रों ने आज मना कर खड़ा किया
आपके साथ मैं अमर विकास कुमार दोपहर के 3 बज चुके हैं और आज की सबसे बड़ी खबर
आप बड़े परेशान अपनी नशे की लत को छोड़ नहीं पा रहे
तो इसलिए हमें चाहिए कि मानव समाज में जो हर प्रकार के व्यसनों की ओर प्रेरणा दी जा रही है जो सामाजिक दबाव का प्रभाव हर प्रकार की युवा पीढ़ी पर हो रहा है उससे बचने के लिए हर परिवार को हर माता पिता को हर युवा को व्यक्तिगत रूप से प्रयास करना है और हम बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि इस्कॉन आपत्ति के इस आध्यात्मिक प्रगति के प्रयास में हर कदम पर हर पग पर उपस्थित है
Never I have not seen such a program and new program which has taken place in this Kanpur.
I am happy that ISKCON is organizing new festival. ISKCON is a very new dimension of and presented a new dimension of the to the world.
So I think it is very, very powerful presentation and it will have a very good impact on the consciousness of everyone who came here.
यूथ हमारा भविष्य है, यूथ को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनके विचार हो, पॉजिटिव हो, अच्छा सोचे, अच्छा करें, अच्छा भविष्य बनाए, ये हम कामना करते हैं। बच्चे इससे बहुत प्रभावित होते हैं और उम्मीद करते हैं हम आगे इसी तरह प्रोग्राम करते रहेंगे।
आज के समय में जो अपना यंग है, यूथ है, उसको सही रास्ते पे चले और वो आगे देश को उन्नति करे, वही सबसे बड़ी बात है। कौन इसी बारे में काफी मेहनत कर रहा है और मेरे को उम्मीद है कि आगे भविष्य में लोग इसी तरह से इस काम से जुड़ते रहेंगे।
लॉट ऑफ मैसेज हैव बीन गिवन फ्रॉम द यूथ इजीली बाय जेटिंग डिवोटेड टू द लॉर्ड कृष्णा, वी कैन इजीली बी गॉन फ्रॉम द
हरे कृष्ण। तो ये भगवान की प्रसन्नता के लिए बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ था, 7 तारीख को होने वाला था लेकिन 6 तारीख को रात को ही भगवान कुछ और इच्छा था, देखा आप लोगों ने आंधी तूफान आया, सब कुछ उड़ गया, कुछ भी नहीं था। तो हमारे भक्त लोग बड़े डिमोरलाइज हो गए, क्या करना चाहिए। मैंने कहा बड़े चलो बहादुर हो, बड़े चलो, कुछ भी हो चलना है। तो ऑल दो वी लॉस्ट 15 लाख रुपीज, बट किए फिर नेक्स्ट संडे, हम नेक्स्ट सैटरडे, और पीपुल आई मीन पीपुल दे रियली लव इस्कान, लाइक बालकृष्ण गोयंका जी और कमिटी मेंबर हियर एंड बिग बिजनेस टाइकॉन, ही हैड टू गो फॉर द मीटिंग इन चाइना बट ही कैंसिल एवरीथिंग फॉर दिस प्रोग्राम, नेक्स्ट ऑलरेडी वॉज सपोर्ट टू गो। एंड अदर पर्सन ही वॉज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूएन यूनाइटेड नेशन फ्रॉम इंडिया साइड ऑन पार्ट ऑफ एजुकेशन, जो बुजुर्ग से बोल रहे थे, यू नो ही ऑल्सो केम। सो इट वॉज नाइस प्रोग्राम। ए प्रोग्राम है CSR के अंदर, एक प्रोग्राम है डी एडिक्शन का, एंटी एडिक्शन, एंटी ना, नॉट डी एडिक्शन, एंटी एडिक्शन। तो हर एक साल हम लोग करते हैं और इसमें से बहुत से बच्चे लोग हैं जब करते हैं और हमारे बेस्ट में हैं, बहुत लोग हैं, और एक कर्म अवतार प्रभु और सब लोग बहुत परिश्रम करते हैं। सो भगवान नरसिंह देव की प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कुछ किया जा रहा है। मैं मुकुंद माधव प्रभु से कहा हूं कि अभी हम यहां भी करेंगे कुछ है, सब यूथ लोगों को ला करके यहां पर स्पेशल करेंगे भगवान नरसिंह देव की प्रसन्नता के लिए। सो एनीवे आई विल जस्ट फिनिश दिस थिंग, किस प्रकार से भगवान आए और भगवान का स्तुति सब लोग किए, विभिन्न प्रकार के देवता लोग, और उसके बाद नरसिंह भगवान को प्रहलाद जी संतुष्ट कर पाए और भगवान नरसिंह देव प्रहलाद जी को वरदान दिए, राज्याभिषेक किए, उसके बाद वहां से वे चले गए। उसके बाद अध्याय 11 से 11, 12, 13, 14, 15 जो है इसमें से वर्णाश्रम धर्म का भली भांति निरूपण किया गया, जब प्रहलाद महाराज परिभ्रमण में निकले हैं और वे मिले हैं दत्तात्रेय भगवान से, अवधूत से, तो अवधूत और प्रहलाद संवाद है, वही बड़ा सुंदर है, 5 अध्याय में आप सब लोग पढ़ लेना। तो इस प्रकार से ये 7वां स्कंद जो है वह प्रहलाद महाराज को ही डेडिकेटेड है। तो प्रहलाद महाराज के चलते आज हम लोग नरसिंह भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं और नरसिंह देव का आज हम लोग आविर्भाव तिथि मना रहे हैं। एक सूचना है कि आज शाम को भक्त लोग हरि नाम करने जाएंगे और पुस्तक वितरण करने जाएंगे, लेकिन टाइमिंग है 4 बजे से 6 बजे तक। तो 4 से 6 बजे जो भक्त लोग जाना चाहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने और संकीर्तन करने के लिए, वो लोग जा सकते हैं। आई थिंक सेम टाइमिंग फॉर यज्ञ आल्सो हियर 5:30, ओके, ऑलराइट, सो विल स्टॉप हियर 2 आवर है पास। एनी क्वेश्चन महाराज, कमेंट, कुछ बहुत हो गया, अभी सब थक गए हैं, मेरा भी बैक दर्द कर रहा है अभी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की, शील प्रभुपाद की।